अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा आपके साथ एक छोटी सी घोषणा शेयर की जाए। सिचुएशन जब हम जेल में नए नए गए थे, तो जैसा कि आप जानते हैं जेल की लाइफ एक बहुत ही भयानक होती है लोगों की नज़र में, शहर के लोगों की नज़र में, लेकिन अंदर की लाइफ अगर बताया जाए तो बहुत ही, जो पाकिस्तान की जेल अडियाला जेल है तो देखा जाए तो वो एक बहुत ही सनसनी खेज किस्म की है। मतलब अंदर पोल्यूशन नहीं है, अंदर हॉस्पिटल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स अगर हैं तो वो काफ़ी दूर हैं क्योंकि जेल का रकबा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रकबा है। मतलब पता नहीं 5000 कनाल पे आप समझें कि जेल रेडी हुई हुई है, 5000 कनाल, पता नहीं कितने मरबे बनते हैं, उससे भी कई ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड कर लिए, जिधर बहुत सी चीज़ें होती हैं अंदर जेल में। चक्कर होता है, चक्कर पर ठेकेदारियाँ चलती हैं, मतलब फ्रॉड अंदर इतना ज़्यादा है कि जेल की दीवार भी पैसे मांगती हैं। और आप कैसे करेंगे कि आप जब नया नया इंसान जाता है तो वो अपनी उन टेंशनों के अंदर गुम होता है कि वो क्या बताए, कि वो कैसे करे, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करे। जब वो अंदर जेल जाता है सबसे पहले तो उसको अपनी खड्डी लेनी पड़ती है, और खड्डी लेने के लिए आपकी जेब में 3000 रुपये, आज से तकरीबन 2014 की बात कर रहा हूँ, 15 की बात कर रहा हूँ, जब 3000 लिया करते थे, अब तो 5000 रुपये हांडी वाली होती है। हांडी वाली की डेफिनेशन बताता चलूँ, 3-4 बंदे इकट्ठे रहते हैं एक जगह पर और 5000 रुपया महीने का मंगा के देते हैं, और उस 5000 रुपये में ही उन्होंने गुजारा करना होता है पूरे महीने में, जिसमें जेल का जो खाना आता है, फीका खाना जिसे कहते हैं, मोस्टली सबके लिए अवेलेबल, जो मिर्चें ज़्यादा नहीं खा सकता, कभी गोभी आती है, कभी चिकन, तो वहाँ इतना आता है कि आपकी सोच है, आप चिकन से आप नफरत कर बैठेंगे। सबसे ज़्यादा जेल में पसंदीदा सब्ज़ी जो खाई जाती है वो सब्ज़ियाँ हैं, उनमें करेले आते हैं, करेले के बाद भिंडियाँ आती हैं, भिंडियों के बाद शिमला, अगर आपकी किसी के कमरे में खड्डी पे सब्ज़ी पकी हुई है तो उसको सबसे ज़्यादा लैंडलॉर्ड समझा जाता है कि ये इसकी खड्डी पे, खड्डी एक जगह होती है जहाँ पे लोग सोते हैं, एक थड़े की तरह बनी होती है, जैसे कि फुटपाथ बनी होती है, उस पे लोग सोते हैं, और उस पे सोने के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 महीने चाहिए ताकि आपका एक आपका एक स्टेटमेंट बन जाती है वहाँ पे रहने की, जेल में रहने की आपका एक टाइम बन चुका होता है, फिर आप वहाँ पे रहते हो, फिर जाके आपको ऊपर खड्डी मिलती है। जी इसका नंबर है जी, क्योंकि इसका केस बड़ा है, कत्ल के केस में या ये डकैती के केस में या जो भी है, चोरों डकैतों के ऊपर जब ज़्यादा सारे केस लगते हैं तो उनकी उड़तियाँ लग जाती हैं। उड़ती को क्या कहते हैं, हर कमरे में रोज़ाना उन्होंने डिफरेंट कमरों में सोना है, और ज़मीन पे फुटपाथ के नीचे वाले एरिया जहाँ चला जाता है उसको ज़मीन कहा जाता है, और वो मोस्टली बहुत ही गंदी होती हैं, जिसके ऊपर बिस्तरे बिछाए जाते हैं, कंबल बिछाए जाते हैं, और वो कंबल के साथ वो नीचे पड़े होते हैं। हर बैरक के अंदर 8 कमरे होते हैं, आठ कमरे नहीं होते, 9 कमरे होते हैं, हर बैरक के अंदर 9 कमरे, सॉरी 6 कमरे होते हैं, सॉरी अबाउट दैट, 6 कमरे होते हैं, 3 कमरे नीचे होते हैं, 3 कमरे ऊपर होते हैं, और बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे किस्म के कमरे होते हैं, बाथरूम में गिनी चुनी 3-4 ही होती हैं हर कमरे में, और नहायत गंदी तरीन होती हैं। मैं जब गया था तब खोकर्स वगैरह अंदर थे, और 3/6 में मैंने ज़िंदगी गुजारी, और सबसे पहले मैं जब नया नया गया तो मैंने जब वहाँ देखा, मैं अपनी परेशानियों में गुम था, और मेरी कमरे में गिनती कट जाती है, कमरे में गिनती कटती है, 3/12 के 2 कमरे में मेरी गिनती कटती है जी, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो नीचे एक अब्बासी साहब होते हैं, बड़े गड़चुए से, पतले से, गैस की किट वाला मुंह होता है उनका, और वो कहते हैं कि मैंने एक बंदे को ब्रेस्ट मारा, उसके 2 टोटे हो गए। मैं उसकी कहानियां सुन के बड़ा परेशान होता हूँ। और फिर जब एक सामने एक चाचा होता है, चाचा चौधरी जिसे बार बार बुलाते हैं, हालांकि है वो क्रिश्चियन था एक टाइम था, लेकिन वो फिर बाद में मुसलमान हो गया, चाचू मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं, और ज़्यादा सारी अंगूठियाँ उन्होंने पहनी होती हैं, रंग उनका सांवला सा होता है, लेकिन ही वॉज़ अ वेरी फनी गाय, बहुत मज़ा आता था उनके साथ बात करके। फिर जब मैं उनकी खड्डी पे जाके उनसे बातें सुनता था 2-4, तो अब्बासी साहब बड़ा मान जाते थे कि भाई हमारी एक औकात है, हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते। मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिस जगह पे तुम मौजूद हो ये बहुत ही भयानक जगह है, अगर यहीं पे इसलाह अपने गुनाहों की, अपनी आकड़ की नहीं की तो बाहर कुछ नहीं कर पाओगे। हज़रत अली का कौल है कि इंसान को अगर पहचानना है ना तो उसको पहचाने वहाँ पे, कि अगर इंसान बाहर ख़राब था तो अगर जेल में दुरुस्त हो गया तो वो इंसान अच्छा था। मतलब अगर इंसान जेल के बाहर भी ख़राब था, अंदर जेल के आके भी ख़राब ही था, तो उस इंसान के बाहर को और अंदर में कोई फ़र्क नहीं, कि उसने अपनी गुनाहों की इस्लाह कोई नहीं की। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है, मैं रोज़ तीन से चार दिन गुजरते हैं मैं परेशान रहता हूँ, लेकिन फिर आखिरकार मैं तंग आके चक्कर वालों को 1500 रुपया दे के अपनी गिनती कटा लेता हूँ कमरे में जहाँ खोखर रहते थे। खोखरों के बंदे, कमरा बिल्कुल साफ, 9 बजे खबरें सुनने के बाद सो जाया जाता था, कोई गप्पे नहीं लगाता था किसी के साथ और बहुत ही साफ और खामोशी के साथ होता था और कोई चूचा नहीं होती थी कमरे में। दोपहर को बिल्कुल सुकून होता था बिकॉज लोग मोस्टली दूसरे कमरों में अपने दोस्तों के साथ भाग जाते थे क्योंकि उनको वहाँ घुटन फील होती थी क्योंकि वहाँ सुकून ज़्यादा था। उस कमरे में सबसे ज़्यादा सफाई थी, नसवार मुंह से निकाल के जो बिट करती है पठान कौम वो करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। जी हाँ, जो ये पठान कौम है अक्सर मुंह से बिट करती है और जेल में बहुत पाई जाती हैं ये बिटें, ये जगह जगह पाए जाते हैं मुंह से निकालते हुए आपको। जी तो ये भी करते थे। तो एक वक्त आया आते आते जो है हमने उस कमरे में अपने आप को सेटल किया, हमें ज़मीन पे जगह मिली लेकिन एक साइड पे करके दरवाजे के साथ जहाँ से हवा आती थी और कुछ बिल्लियाँ आती थीं जिनकी थोड़ी सी आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, दो फीमेल बिल्लियों की। तो वो हमारे भट्टी साहब थे जिन्होंने रखी हुई थी, जिसके लिए वो अक्सर दूध की पुकार रखते थे हर एक की खड्डी खड्डी पे जाके कि मुझे डब्बा दूध का दे दो, जो कहते थे कि वो जुबैदा बख्तियार के बहुत पुराने दोस्त हैं, वो उनकी बहुत वो जो है पुरानी फ्रेंड थी। आई हैव नो आइडिया, मे भी होती होंगी, हु नोस। खैर वो अपने केस में मुब्तला थे। उस कमरे में खोखरों का एक रोब था, लंबे लंबे बालों वाले लोग थे वहाँ पे, खोखरों का स्टाइल था, लंबे चोले थे, जेबां खाली, चलो चलिए मियाँ वाली, हाय हाय हाय। जी हाँ, वहाँ पे ऐसे लोग पाए जाते थे और अगर कोई ज़रा सी बदतमीज़ी करता था तो उसको लटा के उल्टा जूतियों की बरसात की जाती थी। मेरे यहाँ आने वाले सामने का वाक्या है क्योंकि वहाँ वो ताकतें रहती हैं जिनके पास बहुत पैसा है। अगर कोई गरीब इंसान है किसी की यानी कि नहीं चलती तो आई डोंट थिंक कि जेल उसके लिए है। जेल उसको इतना मारेगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे। अगर आप कोई स्किल्स रखते हो, कोई चीज़ रखते हो तो आप कुछ कर पाओगे, आई डोंट थिंक आई फिर आप अदरवाइज आप रह पाओगे जेल में। मुझे मोबाइल ठीक करने आते थे, जो कि बहुत बाद में जाके मोबाइल्स का रुझान स्टार्ट हुआ। जो स्टार्ट कैसे हुआ कि मैंने एक इन्वेंशन रेडी की, हमारे एक जानने वाले दोस्त थे जिनको हमने कहा कि एक सॉफ्टवेयर रेडी करके दे दीजिए, लोग बाथरूमों में चढ़ के सिग्नल ढूंढते हैं और बदबू बहुत आती है और लोगों की ऊ आ ई की आवाज़ भी सुननी पड़ती है, तो आई डोंट थिंक ये गलत ये तरीका है इधर से बाथरूम में बात करने का। और कभी कभी आप खुद बाथरूम में होते हो तो कोई बाथरूम में बात करता था फ़ोन पे तो आपको बड़ी उलझन होती थी, आप बड़ी ही होल्ड करके बाथरूम करते थे बिकॉज कोई सुन ना ले आपकी रिंग टून। तो इसी तरह ही हमारे अक्सर खोखरों के बंदे वहाँ कमरे में, जब मैं गया सुकून तो था, बाथरूमें भी बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे हमारे खोखरों के जो बंदे थे, जो मुलाजमीन थे, जो रहते थे बड़े आलीशान तरीके से, वो जो है अक्सर फ़ोन करने के लिए ऊपर करके चढ़े होते थे और अक्सर उनका सर नज़र आ रहा होता था जब आप बाथरूम की फ्लैश पे बैठे होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के वकूए होते हैं और हर एक ने अपना अपना सिस्टम रखा होता है। अंदर जेल में चरस भी चलती है, जब मैं था तो चरस ऐसे बिकती थी जैसे थड़ों पे रख के बेची जाती है इस तरह से। अब तो बाद में सख्ती हो गई बिकॉज सुपरिटेंडेंट वगैरह काफ़ी सख्त आए, उन्होंने दरूद वगैरह की विर्द की, लोगों से अपील की कि सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ा जाएगा तो जेल में पढ़ा जाएगा और बकायदा बताया जाएगा कि किसने कितना पढ़ा है, भाग हम सबको बताएगा। हर कमरे से लिखा जाता था कौन कितना दरूद बेचता है। देखा जाए तो जेल में इतनी इबादतें होती हैं कि आपकी सोच है, अगर जेल में मुनाफ़त ना हो, जेल में जो सबसे बड़ा गुनाह है जो मुनाफ़त का है, वो अगर ना हो तो जेल की दीवारें इबादतों से फट जाएं। दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा इबादत करने वाली जगह है वो या तो खाना काबा है या तो फिर जेल है। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बाहर निकाल दो की इल्तिजाएँ करता है, जो शायद किसी को भी नहीं पता। आप लोग आज़ादी की उस नेमत को लिए बैठे हैं कि आप लोगों को नहीं पता, जो अंदर जेल जाता है वही जानता है कि वो किस नेमत से दो चार था और वो अब उससे छिन गई। मे बी समटाइम्स अल्लाह ताला आपको ऐसी राह दिखा देते हैं कि कुछ ऐसे मुश्किल घड़ी से बचाने के लिए आपको एक छोटी जगह में रख देते हैं ताकि आप उस बड़े मामले में ना फंसो। बाकी जेल में एक बड़ा सा चक्कर है जिधर रिश्वतें चलती हैं, जिधर पैसे चलते हैं, पैसे बोलते हैं, गिनती कटा के किसी कमरे में जाना है तो बोलते हैं, उड़ती नहीं लगानी तो पैसे लगते हैं, हर चीज़ पे पैसा लगता है क्योंकि वहाँ की इंतज़ामिया ठेके देती है। 1.5-2 करोड़ का ठेका लगता है और फिर उस ठेके को उन्होंने पूरा करना होता है, जो कि वो कैसे करते हैं, मोबाइल फ़ोन दे के। उस दौर में 40,000 रुपये में एक बंदा फ़ोन रखता था जिसे वो एज अ PCO चलाता था। 100 रुपये की कॉल 5 मिनट में होती थी, तो लेकिन वो पैसे चक्कर वाले रखते थे। हमारा काम जो था वो ये था कि हम अपने जो मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम था, हम उसको हमने इंटरनेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाए, एक दोस्त के थ्रू, जो वाई ट्राइब का कार्ड डाल के आगे लोगों की कॉलें मिलाते थे, और फिर आप खड्डी पे बैठ के आराम से फ़ोन सुनते थे इंस्टेड ऑफ बाथरूम। हमारा जेल में एक नाम हो गया था जिसे उस्मान उस्ताद के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ कि हम वहाँ से निकल गए, बिकॉज़ हमें किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि अगर तुम दिल यहाँ नहीं लगाओगे तो अंदर ही रह जाओगे। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं, जी जेल एक ऐसी बेवफा जगह है जो आप जब इससे दिल लगा बैठते हो, ये आपको उठा के बाहर फेंक देती है। ज़िंदगी का क्या बताएं, ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन जेल की आपको बतानी थी। मैं एक नए वकूए के साथ आपके साथ ज़रूर हाजिर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है आप किसी से नाराज़ हैं, उसके साथ रजामंदी कीजिए। अपने किसी मामू चाचू जिसको आपने बड़े अरसे से कॉल नहीं की, ज़रूर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। आप लोग बाहर से मुझे सुनते हैं, US से, जर्मनी से, आप लोग बेचारे अपने घरों से बिछड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ उसकी तकलीफ़ जानता हूँ। जब मैं बिछड़ के जेल गया था तो मेरे भी कमर के पीछे के जो पर थे वो भी मुझे नज़र आते थे, लोगों को नज़र नहीं आते थे, लेकिन मैंने लोगों के पर कटे हुए देखे। जब लोगों को घर से उखेड़ के जेल में फेंका जाता है, मुझे उनके पीछे उनकी कमर के पर नज़र आते थे, और वो तकलीफ़ उस परों के अंदर से खून की तरह बह रही होती थी कि एक इंसान कितनी तकलीफ़ में मुबतला है, लेकिन ये किसी को बताता नहीं। ये मुस्कुराता रहता है लेकिन किसी को बताता नहीं। वहाँ लोग मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और बाहर के लोगों से तवक्को होती हैं। वहाँ बहुत सा कुछ होता है, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू गाइस। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।